بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ ریڈیو تہران ہے, اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز.
ریڈیو تہران کے آدرنیہ شروتا, زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کیجیے. شروتاؤں, آج کے کاریکرم کا شبھ آرمبھ پوتر قرآن کے سورہ حجرات کی چھٹی اور ساتویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کیا جا رہا ہے. قاری ہیں شری عبد الباسط.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے. ہے ایمان والو, یدی کوئی ادھرمی کوئی خبر لے کر آئے تو چھان بین کر لیا کرو, ایسا نہ ہو کہ تم کسی گٹ کو انجانے میں کوئی ہانی پہنچا بیٹھو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر پشچاتاپ ہو. اور جان لو کہ تمہارے بیچ ایشور کے پیغمبر موجود ہیں. بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ یدی پیغمبر ان میں تمہارا کہا مان لیا کریں तो उल्टे तुम ही कठिनाई में पड़ जाओ, परंतु ईश्वर ने तुम्हें ईमान का प्रेम दिया है और उसे तुम्हारे हृदयों में सजा दिया है, और कुफ्र, उल्लंघन और अवज्ञा को तुम्हारे लिए अप्रिय बना दिया है, और ऐसे ही लोग ईश्वर के अनुग्रह और उपकार से सही मार्ग पर हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, सभा में आपका स्वागत है। आज सोमवार है, मई की 23, शव्वाल की 28 और खुर्दाद माह की 9 तारीख। कार्यक्रमों में पहले हम विश्व समाचार पेश करेंगे। विश्व समाचारों के बाद आप राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम सुनेंगे। राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम के उपरांत साप्ताहिक कार्यक्रम पेश किया जाएगा विश्व दर्पण, और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा सेहत का राज। तो श्रोताओं, ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले आज के प्रमुख समाचारों का सारांश। ईरान और ताजिकिस्तान के संबंधों में लगातार विस्तार हो रहा है। इराकियों का कहना है कि देश में आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष की सबसे बड़ी रुकावट अमरीका है। इसराइल ने यह बात स्वीकार की है कि सऊदी अरब से संबंध सामान्य करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बैरूत के हवाई अड्डे पर नशीली गोलियों के साथ सऊदी कमांडर पकड़ा गया है। और अब आप विस्तार से कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए। राष्ट्रपति रईसी ने कहा है कि ताजिकिस्तान के साथ व्यापारिक आदान प्रदान में वृद्धि द्विपक्षीय संबंधों में परिवर्तन का सूचक है। सैयद इब्राहिम रईसी ने ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ तेहरान में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बताया कि व्यापारिक आदान प्रदान में 4 गुना वृद्धि ईरान और ताजिकिस्तान के संबंधों में बड़े परिवर्तन की निशानी है। सैयद इब्राहिम रईसी और इमाम अली रहमान की मौजूदगी में आर्थिक, व्यापारिक, परिवहन, पूंजी निवेश, आधुनिक तकनीक, पर्यावरण, खेलकूद, ऊर्जा, अंतरिक्ष और पर्यटन आदि के क्षेत्रों में सहयोग के 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में ईरान के राष्ट्रपति ने बताया कि ताजिकिस्तान की उनकी यात्रा के बाद से दोनों देशों के संबंधों में इतने अधिक परिवर्तन हुए हैं कि आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इब्राहिम रईसी ने कहा कि क्षेत्रीय मामलों में ईरान और ताजिकिस्तान के बीच संयुक्त दृष्टिकोणों के कारण हमारा अब ये मानना है कि विदेशियों की उपस्थिति किसी भी स्थिति में शांति स्थापित नहीं कर सकती। अफगानिस्तान के बारे में ईरान के राष्ट्रपति का कहना था कि ईरान और ताजिकिस्तान का ये दृष्टिकोण है कि अफगानिस्तान में शांति एवं स्थिरता स्थापित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वहां पर आतंकवादियों की उपस्थिति चिंताजनक है। तेहरान में आयोजित इस संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति ने ईरान में अपने स्वागत पर आभार व्यक्त करते हुए दोनों देशों के बीच निजी क्षेत्र के अधिक सक्रिय होने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ताजिकिस्तान तथा ईरान के औद्योगिक एवं कर मुक्त क्षेत्रों में विस्तार दोनों देशों के हित में है। ایران کے ودیش منتری حسین امیر عبداللہیان نے فن لینڈ کے ودیش منتری سے وارتا میں شیتری اور انتراشٹری سنکٹوں کی سمیکشا کی۔ حسین امیر عبداللہیان اور فن لینڈ کے ودیش منتری پیکا ہاویستو نے اس وارتا میں یوکرین کی جنگ پر بھی بات چیت کی۔ امیر عبداللہیان نے فن لینڈ کے ودیش منتری کے حالیہ تہران دورے اور اس سفر میں ہونے والے سمجھوتوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں دیشوں کے بیچ سہیوگ کو وستار دینے کی مضبوط بنیادیں موجود ہیں۔ ایران کے ودیش منتری نے پرمانو وارتا کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران ایک اچھے مضبوط اور ٹکاؤ سمجھوتے کے لیے پوری طرح سے گمبھیر ہے، مگر امریکہ اب تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکا ہے جو کہ اسے کرنا ہے۔ ودیش منتری حسین امیر عبداللہیان نے یمن میں جاری سنگھرش ویرام کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس دیش کی ناکہ بندی فوراً ختم ہونی چاہیے اور سنکٹ کو حل کرنے کے لیے وارتاؤں کا دور شروع کیا جانا چاہیے۔ یوکرین جنگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے ودیش منتری نے کہا کہ ایران جنگ کا ویرودھی ہے اور ہم دونوں ہی یدھرت پکشوں سے اپیل کرتے ہیں کہ یدھ روک کر آپس میں بات چیت شروع کی جائے۔ عراقیوں کا یہ ماننا ہے کہ ان کے دیش میں آتنکواد کے ولوس سنگھرش میں سب سے بڑی رکاوٹ امریکہ ہے۔ عراق کے سوئم سیوی بل حشد الشعبی کے کمانڈر کہتے ہیں کہ دیش میں امریکہ کی اپستھتی ہی آتنکواد کے ولوس سنگھرش کی سب سے بڑی بادھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی اپستھتی کے کارن سیریا سے ملنے والے عراق کے سنیکت سیماورتی کھیتروں میں سرکشا ایوم شانتی استھاپت نہیں ہو پا رہی ہے۔ عباس الزیدی نے کہا کہ امریکیوں نے دیش کے سیما ورتی کھیتروں میں سرکشا بلوں کی تعیناتی کا پتہ لگا لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی حساب سے امریکی آتنکوادیوں کو آتنکی کاروائیاں کرنے کے لیے وبھن کھیتروں سے بھیجتے رہتے ہیں۔ حشد الشعبی کے انوسار اس بات کا پتہ اس طرح سے چلتا ہے کہ آتنکوادیوں نے اپنی حالیہ کاروائیوں میں عراق کے پشچمی کھیتروں کو لکش بنایا جو سیریا کی سیما کے نکٹ استھت ہیں۔ عباس الزیدی کے انوسار داعش کے آتنکی عراق کی سینا کے ٹھکانوں پر حملے کرنے کے لیے پریاس میں لگے رہتے ہیں۔ اسی بیچ عراق کے سرکشا سوتروں نے بتایا ہے کہ حالیہ دنوں کے دوران عین الاسد چھاونی میں امریکی سینکوں کی گتیویدھیوں میں ابھوتپورو وردھی ہو گئی ہے۔ اسرائیل نے یہ بات سویکار کی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ سمبندھ سامان کرنے کے لیے پریاس لگاتار جاری ہیں۔ زائونی شاسن کے ودیش منتری نے یہ بات مانی ہے کہ اس سمے امریکہ اور فارس کی کھاڑی کے کچھ تٹورتی دیشوں کے ساتھ سمنوے کر کے تیل اویو اور ریاض کے بیچ سمبندھوں کو سامان کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کی جا رہی ہے۔ امریکی ویب سائٹ ایکسس نے ابھی حال ہی میں اس بارے میں رپورٹ دی ہے۔ اسرائیل ٹائمز کے انوسار امریکہ کی مدھیستھتا سے اسرائیل تتھا سعودی عرب کے بیچ سمبندھوں کے سامان کیے جانے کی اٹکلوں کے دوران زائونی ودیش منتری نے اس بات کو سویکار کیا ہے۔ انہوں نے مانا ہے کہ اسرائیل تتھا سعودی عرب کے سمبندھوں کو سامان بنانے کے لیے پریاس کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یو اے ای، بحرین اور موروکو کے ساتھ زائونی شاسن کے سمبندھوں کو سامان بنائے جانے کے سمجھوتے کی اور سنکیت کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک لمبی پرکریا ہے جو آگے بھی جاری رہے گی۔ اسرائیل کے ودیش منتری کی اور سے یہ بیان ایسی استھتی میں سارجنک ہوا ہے کہ جب اس سے پہلے اسرائیل کے چینل 12 نے رپورٹ دی تھی کہ زائونی شاسن کے ایک ادھیکاری نے سعودی عرب کے راج شاہی محل میں اس دیش کے کچھ ادھیکاریوں سے بھیٹ وارتائیں کی ہیں، جہاں ایک طرف سعودی عرب بار بار لبنانی سنگٹھنوں پر مادک پدارتھوں کی تسکری کا آروپ لگاتا ہے، وہیں سعودی عرب کا ایک کمانڈر بیروت کے سعد حریری ایئرپورٹ پر 18 کلو نشیلی گولیوں کے ساتھ پکڑا گیا ہے۔ عادل الشمری نام کا کمانڈر یہ مادک پدارتھ لبنان سے کویت لے جانا چاہتا تھا۔ سعودی عرب کے اس کمانڈر کے پاس فینیتھلین نام کی گولیوں کی کھیپ تھی جو مادک پدارتھوں میں آتی ہے۔ لبنان کے میڈیا میں یہ خبر چھا گئی ہے، لیکن سعودی عرب کی اور سے اب تک اس پر کوئی بھی اوپچارک پرتکریا نہیں دی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر سعودی کمانڈر کی تصویروں اور اس کے پاسپورٹ کی ٹو کاپی وائرل ہو رہی ہے، مگر اس پر سعودی عرب کی اور سے کوئی جواب نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے سعودی عرب کا ایک راجکمار بھی اسی پرکار کی نشیلی گولیوں کو لے کر بھاگتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ اس بار لبنانی پرشاسن نے سعودی راجکمار کو پکڑ لیا تھا۔ سعودی عرب میں مادک پدارتھوں کی تسکری کو لے کر بہت کٹھور قانون بنائے گئے ہیں، اور اس دیش میں مادک پدارتھوں کی کھیپ کے ساتھ پکڑے جانے والے ویکتی کے لیے بہت ہی کٹھور سزا کا پراودھان کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو فوٹیج بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، جس میں یورپی کمیشن کی پرمکھ یہ بتاتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں کہ یورپ پوتین کا تیل خریدنا کیوں نہیں بند کر پا رہا ہے۔ وون ڈر لین نے یہ بات ایم ایس این بی سی ٹی وی چینل کو ساکشاتکار دیتے ہوئے کہی ہے۔ بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس بات کا سنتولن بنا کر چلنا پڑے گا کہ ہماری اکانومی کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ روسی حملوں کو روکنے کے لیے ہمارے پاس یہی مضبوط پہلو ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے تتکال پوتین کا تیل خریدنا بند کر دیا تو روس یہ تیل یورپ کو نہ بیچ کر وشو کی منڈیوں میں مہنگی قیمت پر بیچے گا، اور اس سے وہ زیادہ پیسے حاصل کر پائے گا۔ یورپی ادھیکاریوں نے کہا ہے کہ ہمیں بھرپور اسٹریٹجی کے ساتھ اس مدعے سے نپٹنا ہوگا، اور دنیا کے انیہ دیشوں کو اس کے لیے تیار کرنا ہوگا کہ وہ سہیوگ کر کے روس کی آمدنی کے سروتوں کو سیمت کریں۔ انہوں نے کہا کہ گزرتے وقت کے ساتھ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ روسی ایندھن پر اپنی نربھرتا کم کریں اور پھر دوبارہ ورتمان استھتی کی طرف کبھی نہ لوٹیں۔ گت منگلوار کو روس کے راشٹرپتی نے کہا تھا کہ کچھ یورپی دیش ہیں جن کے بس میں نہیں ہے کہ روس سے تیل خریدنا بند کر پائیں۔ پوتین نے کہا کہ یورپی دیشوں کی نیتیوں کی وجہ سے انفلیشن بڑھ رہا ہے، مگر یورپی دیش اپنی بھول سدھارنے کے بجائے دوسروں کو کوستے رہتے ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ کیندری ایشیا کے لیے افغانستان سے مادک پدارتھوں کی تسکری دو برابر ہو گئی ہے۔ روس کے سیما سرکشا بلوں کے پرمکھ نے بتایا ہے کہ سن 2021 سے کیندری ایشیا کے دیشوں کے لیے افغانستان سے مادک پدارتھوں کی تسکری میں بہت تیزی سے وردھی ہوئی ہے۔ ولادیمیر کولیشوف نے سن 2001 میں تاجکستان میں 3,500 ٹن مادک پدارتھوں کو ضبط کیے جانے کی بات کہی، جبکہ سن 2020 میں افغانستان سے کیندریہ ایشین دیشوں کے لیے مادک پدارتھوں کی تسکری 1,700 ٹن تھی۔ جانکاروں کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان میں مادک پدارتھوں کی پیداوار اور ان کی بڑے پیمانے پر تسکری کا مکھیہ کارن اس دیش میں امریکی سینکوں کی اپستھتی ہے۔ الیکھنیہ ہے کہ امریکہ نے آتنکواد کے ورودھ سنگھرش کے نام پر سن 2001 میں افغانستان پر حملہ کر دیا تھا، جس کے بعد اس کی وہاں پر 20 ورشوں کی اپستھتی میں مادک پدارتھوں کی کھیتی میں الیکھنیہ وردھی ہوئی۔ وشیش بات یہ ہے کہ جن کھیتروں میں امریکی سینک تعینات تھے انہی کھیتروں میں مادک پدارتھوں کی کھیتی بھی بہت ادھک دیکھی گئی۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے وشو سماچار سماپت ہوئے۔
یہ پرسارن آپ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا سے سن رہے ہیں۔
راجنیتک چرچا۔
دوستو، کاریکرم راجنیتک چرچا لے کر میں سید میسم آپ کی سیوا میں حاضر ہوں۔ تاجکستان کے راشٹرپتی کی تہران یاترا کا جائزہ لے رہے ہیں محمد مہدی۔
ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ रविवार को तेहरान पहुंचे। इमाम अली रहमान का मेहराबाद हवाई अड्डे पर ईरान के ऊर्जा मंत्री ने स्वागत किया। वे एक आर्थिक एवं राजनीतिक शिष्टमंडल के साथ तेहरान पहुंचे हैं। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने सितम्बर वर्ष 2021 को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशंबे की यात्रा पर गए थे। उनकी इस यात्रा के दौरान ईरान और ताजिकिस्तान के बीच 8 सहयोग के समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। ताजिकिस्तान के मूलभूत ढांचे को मजबूत करने और वहां के आर्थिक विकास में ईरान पहले से सहयोग करता आ रहा है। इस्लामी गणतंत्र ईरान वो पहला देश था जिसने ताजिकिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी, और साथ ही ईरान ही वो पहला देश था जिसने दुशंबे में अपना दूतावास खोला था। ईरान और ताजिकिस्तान के बीच लंबे समय से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। ईरान की विदेश नीति में ताजिकिस्तान को विशेष स्थान प्राप्त है। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमाम अली रहमान की 2 दिवसीय ईरान यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। इसके अतिरिक्त आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के बारे में परस्पर विचार विमर्श किया जाएगा। ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री, ऊर्जा मंत्री और व्यापार मंत्री सहित इस देश के वरिष्ठ अधिकारी इमाम अली रहमान के साथ तेहरान आए हैं। राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने 1 मई को एक टेलीफोनी वार्ता में ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति को ईरान आने के लिए आमंत्रित किया था। हालिया 2 वर्षों के दौरान ईरान और ताजिकिस्तान के संबंध व सहयोग पहले से अधिक मजबूत हुए हैं। पिछले वर्ष सितंबर महीने में ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी की ताजिकिस्तान यात्रा और कल ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमाम अली रहमान की तेहरान यात्रा को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। पश्चिम एशिया के कुछ क्षेत्र में अशांति का जारी रहना, क्षेत्र से अमेरिका का निष्कासन और इसी प्रकार यूक्रेन युद्ध का जारी रहना, वे चीजें हैं जो इस बात का कारण बनी है कि क्षेत्र के देश एक दूसरे से निकट सहयोग करके चुनौतियों का मुकाबला करें। इस्लामी गणतंत्र ईरान का मानना है कि क्षेत्रीय देश विदेशियों के हस्तक्षेप के बिना आपस में सहयोग व सहकारिता करके चुनौतियों का मुकाबला व समाधान कर सकते हैं। बहुत से जानकार हलकों का मानना है कि क्षेत्र में विदेशियों की उपस्थिति से न केवल सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो रही है, बल्कि विदेशियों की उपस्थिति असुरक्षा और बहुत सी समस्याओं के उत्पन्न होने का कारण रही है। अफगानिस्तान में अमेरिका और नेटो के सैनिकों की 20 वर्षों तक उपस्थिति को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है, क्योंकि बहुत से जानकार हलकों का मानना है कि अफगानिस्तान की बहुत सी समस्याओं की जड़ और उनका कारण इस देश में अमेरिका और उसके घटक सैनिकों की उपस्थिति रही है। ईरान और ताजिकिस्तान के मध्य बहुत अधिक संभावनाएं मौजूद हैं और दोनों देश विभिन्न क्षेत्र में एक दूसरे से सहयोग करके द्विपक्षीय संबंधों को अधिक से अधिक विस्तृत व प्रगाढ़ बना सकते हैं। बहरहाल ईरान और ताजिकिस्तान के संबंधों और सहकारिता में मजबूती न केवल दोनों देशों बल्कि क्षेत्रीय देशों के भी हित में है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
रूस के खिलाफ यूरोप के प्रतिबंध प्रभावशाली नहीं हो पा रहे हैं, जायजा ले रहे हैं अहमद अब्बास।
यूरोपीय संघ रूस पर लगाए गए 6ठे दौर के प्रतिबंधों को लागू करवाने में
लाख कोशिश के बावजूद नाकाम रहा है। हंगरी ने इन पाबंदियों का विरोध किया है। यूरोपीय संघ के वरिष्ठ कूटनयिकों ने रविवार को अपनी बैठक में कोशिश की कि पाइपलाइन के जरिए तेल की सप्लाई जारी रहने लेकिन तेल टैंकरों से सप्लाई बंद कर देने के मुद्दे पर सहमति बना लें, मगर कामयाबी नहीं मिली। हालिया प्रस्ताव हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य के सामने एक प्रस्ताव था जिससे इन देशों के लिए ये रास्ता खुला रखा गया था कि वे यूक्रेन से गुजरने वाली 4000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए रूस से तेल खरीदना जारी रख सकते थे। अगर पाइपलाइनों को पाबंदियों से अलग रखा जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि यूरोप के लिए रूस के तेल की सप्लाई का एक तिहाई भाग पाबंदियों से आजाद रहेगा और ये मॉस्को के लिए आमदनी का एक बड़ा स्रोत है। यूरोपीय कमीशन की प्रमुख उर्सुला वैन डर लायन ने प्रस्ताव दिया कि जारी वर्ष के अंत तक रूस से तेल की खरीदारी जारी रखी जाए। मतभेद बहुत ज्यादा हो गए और कोई सहमति नहीं बन पाई। हंगरी काफी हद तक रूस के तेल पर निर्भर है, इसलिए वो रूस पर पाबंदी लगाए जाने का विरोधी है। इस देश का कहना है कि रूस के तेल को छोड़ने के लिए उसे अपनी रिफाइनरियों में बुनियादी बदलाव करने होंगे, जिसके लिए 5 साल के समय और अरबों डॉलर की रकम की जरूरत होगी। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन इस समय सबसे बड़ी रुकावट बनकर सामने आए हैं। इसकी वजह से यूरोप में मतभेद बढ़ रहा है। हंगरी के विरोध का मतलब यह है कि रूस के खिलाफ पाबंदियों के जिस नए पैकेज का ऐलान यूरोप ने किया है वो लागू नहीं हो सकेगा। चूंकि यूरोपीय कूटनयिकों की रविवार की बैठक में कोई सहमति नहीं बन पाई, इसलिए सोमवार और मंगलवार को ब्रसेल्स में होने वाली शिखर बैठक में भी कोई फैसला नहीं लिया जा सकेगा। इस बैठक में इस बात की समीक्षा की जानी है कि रूस के तेल और गैस की जरूरत से यूरोप को कैसे मुक्त किया जा सकता है। अब ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि रूस के तेल पर पाबंदी लगाने और परिणामों का सामना करने के विषय पर यूरोपीय संघ में आम सहमति नहीं है। जो देश रूस से तेल खरीदते हैं उनके लिए अपनी जरूरत का तेल किसी अन्य देश से खरीदना आसान काम नहीं है। हंगरी और चेक ने तो कहा है कि अगर रूस पर पाबंदियां लग जाती हैं तो यूरोप की अर्थव्यवस्था ध्वस्त होकर रह जाएगी। इस समय देखा जाए तो यूरोप दोराहे पर खड़ा है। या तो वो अपने आर्थिक हितों को देखते हुए रूस से तेल और गैस खरीदना जारी रखे या फिर अमेरिका की मांग मानकर उसके कार्यक्रमों के अनुसार फैसले करे और अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाए। ऐसा लगता है कि यूरोप रूस पर पाबंदियां लगाने के विषय में वैसे तो अमरीका का साथ देने की बात कर रहा है, मगर पाबंदियों को लागू कर पाने में यूरोप को गंभीर समस्याओं का सामना है। ये बात यूरोपीय देश कह रहे हैं के पाबंदियां लगाने के जो विनाशकारी परिणाम निकलेंगे उनका जिम्मेदार कौन होगा। जर्मनी के वित्त मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद हमने देखा कि जब यूरोप एकजुट हो जाए तो उसका क्या नतीजा होता है। आज यूरोप के बिखर जाने की आशंका पिछले किसी भी जमाने से ज्यादा है। दरअसल यूरोपीय संघ के भीतर ही मोर्चाबंदी हो गई है।
और अब रुख करते हैं भारत का। भारतीय किसान नेता राकेश टिकैत पर स्याही फेंकी गई है। ब्यौरा दे रहे हैं दिल्ली से शमशाद काजमी।
भारतीय किसान यूनियन के नेता और प्रवक्ता राकेश टिकैत पर आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक व्यक्ति ने स्याही फेंक दी। टिकैत एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, इसी दौरान एक व्यक्ति उनके निकट पहुंच गया और उसने राकेश टिकैत के चेहरे पर स्याही फेंक दी। उन पर माइक से भी कुछ लोगों ने हमला किया। बताया जा रहा है कि टिकैत पर हमला करने वाले लोग स्थानीय किसान नेता चंद्रशेखर के समर्थक थे। राकेश टिकैत के समर्थकों ने स्याही फेंकने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया और उसकी पिटाई की। दोनों गुटों में जमकर हाथापाई और धक्का मुक्की हुई और जमकर कुर्सियां चली। हालिया दिनों में ये पहली बार है जब दो किसान गुट इस प्रकार आमने सामने आ गए। टिकैत पर उस व्यक्ति ने स्याही तब फेंकी जब पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर से उनका कोई लेना देना नहीं है। स्थानीय मीडिया ने हाल ही में चंद्रशेखर को लेकर स्टिंग ऑपरेशन किया था। इस वीडियो में चंद्रशेखर ने बस स्ट्राइक के बदले पैसे की मांग की थी। उसने राकेश टिकैत और अन्य किसान नेताओं का भी उल्लेख किया था। टिकैत की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी मुद्दे पर जवाब देने के लिए बुलाई गई थी। बताया जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में राकेश टिकैत ने जब चंद्रशेखर को धोखेबाज कहा तो उसके एक समर्थक ने टिकैत पर स्याही फेंक दी। इस घटना के बाद वहां उपस्थित पत्रकारों से बात करते हुए राकेश टिकैत ने इसे कर्नाटक की भाजपा सरकार की साजिश बताया।
ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है कि यहां पर कोई सपोर्ट नंबर नहीं है, ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है और ये पूर्ण रूप से सरकार की मिलीभगत से ये चक्का।
उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस की ओर से यहां कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई थी। जानकारी के अनुसार इस घटना के बाद 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दूसरी ओर इस घटना का जिम्मेदार किसान नेता को ही बताया जा रहा है। ज्ञात रहे कि वापस लिए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर लगभग 1 साल तक धरने पर बैठे किसानों का नेतृत्व राकेश टिकैत ने किया था। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा समाप्त हुई। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। हमारा ये प्रसारण आप शॉर्टवे में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। अब प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम विश्व दर्पण, उसके बाद आप सुनेंगे अंतिम कार्यक्रम सेहत का राज।
विश्व दर्पण। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, आपका स्वागत है कार्यक्रम विश्व दर्पण में। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में हम बात करेंगे अमेरिका के टेक्सास में होने वाली भयानक फायरिंग की घटना की, जिसमें लगभग 20 मासूम बच्चों की जानें चली गई। अमेरिका के टेक्सास में एक 18 वर्षीय लड़के ने स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें स्कूल में हड़कंप मच गया। हमले में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ स्कूली छात्र, टीचर, स्टाफ और कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। बताया जाता है कि मरने वालों में लगभग 20 छात्र हैं और टीचर शामिल हैं। टीचरों की संख्या 3 है।
She was the sweetest thing. She's so creative. She just got an award for being the most creative.
Fourth grader also.
I don't know what to do, man. She didn't deserve that.
No.
She didn't.
No. Oh, she didn't.
अमेरिका अपने यहाँ सक्रिय गन लॉबी से बहुत परेशान और उसके सामने बेबस नजर आता है। अमेरिका के कई राष्ट्रपति समय समय पर इसे नियंत्रित करने की मंशा जता चुके हैं, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हो पाया। टेक्सास के स्कूल में फायरिंग की ताजा घटना के बाद मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा कि इससे निपटने का वक्त आ गया है।
It's a feeling shared by the siblings and the grandparents and the family members and the community that's left behind. Scripture says, Jill and I have talked about this in different context, another context. The Lord is near to the brokenhearted. And saves the crushed in spirit. So many crushed spirits. So tonight, I ask the nation to pray for them. Give the parents and siblings the strength in the darkness they feel right now. As a nation, we have to ask, when in God's name are we going to stand up to the gun lobby? When in God's name we do what we all know in our gut needs to be done.
अमेरिका में ہر سال بندوق سے ہنسا کے معاملے بڑھے ہیں۔ اس دیش میں آبادی سے زیادہ بندوقیں ہونا استھتی کی گمبھیرتا کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ گن لابی کے آگے سرکار کی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ ورش 2020 میں بندوق 45,222 لوگوں کی جانے جانے کی وجہ بنی۔ سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن اور پیو ریسرچ سینٹر کے انوسار ورش 2020 میں 43% ہتیا، 54% آتم ہتیا اور 3% انیہ طرح کی موتوں کا کارن بندوق ہے۔ رپورٹ کے انوسار ورش 2020 میں 10 میں سے 8% ہتیا کے معاملوں کا کارن بندوق تھی۔ ٹیکاکار تو یہاں تک کہنے لگے ہیں کہ امریکہ بہت تیز گتی سے گرہ یدھ کی اور بڑھ رہا ہے۔ یہ بات بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں۔ امریکہ جب سے استتو میں آیا ہے وہاں جنگ کے خطرے ہمیشہ سے مڈراتے رہے ہیں۔ اس دیش میں ہتھیاروں کا کلچر اتنا عام ہے کہ ہتھیار خریدنا اور اپنے پاس رکھنا کوئی بڑی بات نہیں۔ نوبت یہ ہے کہ 18 سال کا بچہ ٹیکساس میں بندوق اٹھاتا ہے اور اسکول میں چھاتروں پر گولیوں کی برسات کر کے 19 بچوں سہیت 21 لوگوں کی جان لے لیتا ہے۔ کنیکٹیکٹ سے سینیٹر کرس مرفی صدن میں بولتے ہوئے اس گھٹنا سے کافی آہت دکھائی دیے۔ انہوں نے بار بار سوال اٹھایا کہ اس طرح کی گھٹنائیں لگاتار ہو رہی ہیں لیکن ہم کیا کر رہے ہیں۔
Kids dead in an elementary school in Texas right now. What are we doing? What are we doing? Just days after a shooter walked into a grocery store to gun down African American patrons, we have another Sandy Hook on our hands. What are we doing? There have been more mass shootings than days in the year. Our kids are living in fear every single time they set foot in a classroom because they think they're going to be next. What are we doing?
کرس مرفی کا اشارہ پرشاسن کی اور تھا کہ پرشاسن اور انی سنستھائیں اس سندر میں اب تک کچھ بھی نہیں کر سکیں۔
Why do you spend all this time running for the United States Senate? Why do you go through all the hassle of getting this job, of putting yourself in a position of authority, if your answer is that as this slaughter increases, as our kids run for their lives, we do nothing? What are we doing? Why are you here?
وش درپن۔ انتراشٹری گھٹنا کرموں کی نبض ٹٹول کر وش بھر میں ہونے والے پریورتنوں کی تہ تک جانے والا کارکرم وش درپن۔ ہر ہفتے سوموار کو
عرب ٹیکہ کار عبدالباری اطوان نے اپنے لیکھ میں لکھا کہ امریکہ کی استھاپنا 5 کروڑ ریڈ انڈینز کا بھیانک نر سنہار کر کے ہوئی۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جاتی صفایا تھا۔ اس نسلی صفائے کے بعد امریکہ میں گوروں کی سرکار بنی اور اس نے اس بھیانک نر سنہار سے نپٹنے کے بعد جاپان، ویتنام، افغانستان، عراق، سیریا اور لیبیا میں بے حد خوفناک نر سنہار کیے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ بھوشیہ میں وہ اور کتنے نر سنہار کرے گی۔ ٹیکساس کی گھٹنا کی بات کی جائے تو اس پر امریکہ میں ہنگامہ مچا ہوا ہے، مگر یہ بھی طے ہے کہ ہنگامہ کچھ ہی دن کا ہے، جیسا اس طرح کی گھٹناؤں کے بعد عام طور پر ہوتا ہے۔ فلاڈیلفیا کے پورو پولیس کمشنر چارلز رمزی کا کہنا ہے کہ یہ گھٹنا تو سراسر دیوانگی ہے اور اس سے بھی بڑی دیوانگی یہ ہے کہ ان گھٹناؤں کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔
Well, I'm a grandfather now, so, I mean, you know, you hear things like this. I got a granddaughter who is about to begin kindergarten. So, I mean, obviously, this is something that we should not even be talking about. I mean, this is absolutely crazy. And what's even crazier is the fact that nothing's going to be done about it. Absolutely nothing. You know, I listened to the governor of Texas. That's the same governor that was very proud to sign the legislation that he says is protecting the unborn. Well, what about the kids that are already here, Governor? What are you going to do to protect them?
امریکہ کے راشٹرپتی جو بائیڈن ٹیکساس کی گھٹنا پر بہت دکھی نظر آئے اور انہوں نے جو بیان دیا وہ بھی بڑا بھاوک بیان تھا۔
I am sick and tired of it. We have to act. And don't tell me we can't have an impact on this carnage. I spent my career as a senator and a vice president working to pass common sense gun laws. We can and won't prevent every tragedy, but we know they work and have positive impact. When we passed the assault weapons ban, mass shootings went down. When the law expired, mass shootings tripled.
लेकिन जो बाइडेन की बात सुनने से ऐसा लगता है कि जैसे ये पहला नरसंहार हुआ है। बाइडेन ने कहा कि ये अपने किस्म का अनोखा नरसंहार है जिसकी दुनिया के किसी अन्य देश में मिसाल नहीं है। ये इस बात की स्वीकारोक्ति है कि अमेरिका के लोगों में हिंसा और नफरत की भावना इस गहराई तक भर गई है कि वहां बड़े से बड़ी हिंसक घटना की संभावना मौजूद है। जब भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो अमेरिका की गन लॉबी की बातें भी शुरू हो जाती हैं। वो बहुत मजबूत है और सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों पर उसका गहरा प्रभाव है। इसीलिए गन कल्चर और बंदूक बनाने वाली कंपनियों पर कोई रोक नहीं लग पाती। अब तक इस तरह की जो भी कोशिशें हुई वो नाकाम रहीं। मगर इन घटनाओं में केवल गन कल्चर और हथियार बनाने वाली कंपनियों की लॉबी की भूमिका नहीं है, बल्कि खुद अमरीकी सरकार के स्तर पर भी और अमरीकी सरकार के स्वभाव और कल्चर में भी नस्लवाद कूट कूट कर भरा हुआ है। दुनिया में गृह युद्धों पर 30 साल तक शोध करने वाली प्रोफेसर बारबरा वॉल्टर ने हाल ही में लिखा कि इस समय अमेरिका की सरकार तानाशाही और लोकतंत्र के बीच खड़ी है और बहुत तेज गति से गृह युद्ध की ओर बढ़ रही है, मगर यह गृह युद्ध जरा अलग है। इस बार का गृह युद्ध अधिक हिंसक और घातक होगा। FBI के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर एंड्रयू मैककेबे भी यही सवाल उठाते हैं कि आखिर कब इन घटनाओं पर विराम लगेगा।
There has to be some controls and some restrictions to at least minimize the opportunity for people that should not have guns to get a hold of guns. But then if people do use guns to commit crimes, we have to do something with them. It's not just the gun, it's the people who use guns to commit crime. And we've got a situation in our country now where we've got some prosecutors that don't even want to prosecute for illegal possession of a firearm or for putting people on an ankle bracelet that are, in jail charged with murder or aggravated assault or something like that. I mean, we've got to look at the entire system and get serious about this because it's not going to stop on its own. It's not going to stop as a result of thoughts and prayers and candlelight vigils. If we don't take control of this and if we don't do something as a country, then we're going to be having this conversation over and over again. It's just a question of when and where. That's all. Just when and where.
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन टेक्सास की घटना पर तो बहुत दुखी नजर आए, लेकिन यही बाइडेन इराक युद्ध और इराक के विभाजन के समर्थकों में थे। इराक में अमेरिका की बमबारी में शुरू में ही 3 लाख लोगों की मौत पर उनकी आंख से आंसू की एक बूंद नहीं निकली थी। इसलिए अब बाइडेन जब दुखी और आहत दिखाई देते हैं तो बहुत से लोगों को शक होता है। ये भी बात समझने की है कि जिस तरह अमेरिका ने अपने देश के भीतर हथियारों को बड़े पैमाने पर फैलाकर इंसानी जिंदगियों को खतरे में डाल रखा है, उसी तरह वो दूसरे देशों को हथियारों की सप्लाई करके अन्य इलाकों में युद्ध की आग फैला रहा है। टेक्सास की घटना बेहद दुखद है। मासूम बच्चों की जाने जाना और उनके परिवारों का शोक में डूब जाना बहुत दुखद है, लेकिन यह भी सच्चाई है कि अमेरिका आग से खेल रहा है। अमरीकी नीतियां और योजनाएं युद्ध और हिंसा की आग भड़काकर अपने हित साधने की कोशिश की हैं। इस सच्चाई को तो खुद अमरीकी अधिकारी भी मानते हैं कि दुनिया के आतंकी संगठनों को बनाने में अमरीका की भूमिका रही है। अमरीका ने इन संगठनों को उन देशों और सरकारों के खिलाफ इस्तेमाल किया जो वॉशिंगटन की नीतियों पर नहीं चलना चाहते, मगर ये इस किस्म की रणनीति दो धारी तलवार साबित होती है, एक सच्चाई है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका अपनी घातक गलतियों का खमियाजा भुगत रहा है। श्रोताओं, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا۔ تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے۔ اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کاریکرم۔
صحت کا راز۔
دوستو، کارکرم صحت کا راز کی ایک انیہ کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں۔ مریم مہردادی اور غائم رضوی کا سلام سویکار کیجیے۔ آج کے کارکرم میں ہم سنترے یا نارنگی کے فائدے اور اس کے مہتو کے بارے میں چرچا کریں گے۔
मित्रों, संतरा एक ऐसा फल है जो लगभग विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाया जाता है। संतरा सामान्यतः उन क्षेत्रों में पैदा होता है जहां की जलवायु गर्म और संतुलित होती है। ईरान में ये फल उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में अधिक पैदा होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 75 मिलियन टन संतरा पैदा होता है। ईरान में इसकी पैदावार लगभग 2.5 मिलियन टन है। संसार में संतरा पैदा करने वाले देशों में ईरान 9वें स्थान पर है, जबकि ब्राज़ील इसमें पहले नंबर पर है। संतरे या नारंगी का संबंध सिट्रस वंश से है।
संतरे का पेड़ हमेशा हरा भरा रहता है। इसके फूलों का रंग सफेद होता है। संतरे का पेड़ कम से कम 3 मीटर तक ऊंचा होता है। कुछ क्षेत्रों में इसकी लंबाई 10 मीटर तक होती है, लेकिन सामान्यतः ये 3 और 4 मीटर के बीच होता है। नारंगी के पेड़ में टहनियां बहुत होती हैं। दूर से देखने में ये झाड़ी नुमा दिखाई देता है। इसका फल खटास लिए हुए मीठा होता है। कुछ प्रजातियों के संतरे काफी मीठे होते हैं, किंतु अधिकांश खट्टे मीठे होते हैं। इसकी तासीर गर्म बताई गई है। इसको नींबू के परिवार का सदस्य बताया जाता है।
दोस्तों, संतरे का कच्चा फल गहरे हरे रंग का होता है। पकने के बाद इसका रंग पीला हो जाता है। पके हुए फल में विशेष प्रकार की खुशबू आती है। संतरे तो हम सभी खाते हैं, किंतु बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये जानते होंगे कि इस फल का प्रयोग औषधीय रूप में भी किया जाता है। संतरा उन प्राचीन फलों में से एक है जिसका प्रयोग शताब्दियों से मनुष्य करता चला आ रहा है। 500 वर्ष ईसा पूर्व कन्फ्यूशियस ने संतरे के नाम का उल्लेख किया है। वर्तमान समय में अमेरिका में 200 प्रकार से अधिक जाति के संतरे पैदा होते हैं।
संतरे में काफी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त संतरे में लोहा, एमिनो एसिड, फाइबर, कैल्शियम, आयोडीन, फॉस्फोरस, सोडियम, मिनरल्स, विटामिन ए और बी जैसे तत्व पाए जाते हैं। संतरे के भीतर कई प्रकार के स्वास्थ्यवर्धक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। यही कारण है कि शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में संतरे की बहुत अधिक भूमिका होती है। न केवल शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में संतरा सहायक होता है, बल्कि कई प्रकार की बीमारियों से राहत दिलाने में भी ये मदद करता है। हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में संतरा लाभकारी माना गया है।
संतरे के रस में भी कई प्रकार के विटामिन होते हैं, इसलिए ये बीमारियों से लड़ने में शरीर की सहायता करता है। चिकित्सक दिन में कम से कम 1 गिलास संतरे के जूस के प्रयोग की सिफारिश करते हैं। जाड़े बुखार जैसे रोगों से दूर करने में संतरे की महत्वपूर्ण भूमिका है। त्वचा की झुर्रियों को भी ये फल दूर करता है और त्वचा को ये कोमल रखता है। संतरे के छिलके को सुखाकर उसे बारीक पीसकर रख लिया जाता है। बाद में उसमें गुलाब जल मिलाकर उसका पेस्ट बना लेते हैं। इस पेस्ट को चेहरे पर मलने से मुंह की खूबसूरती बढ़ती है। टाइफाइड में भी संतरे का प्रयोग फायदेमंद बताया गया है। नारंगी का नियमित प्रयोग लीवर को स्वस्थ बनाता है। उल्टी या कै को रोकने में भी संतरे का प्रयोग प्रभावी माना गया है।
स्ट्रेस को रोकने में भी संतरा अच्छा माना गया है। ये जानना भी उचित होगा कि हर 28 ग्राम संतरे में 11 किलो कैलोरी पाई जाती है। संतरे के जूस के अतिरिक्त इससे लेमोनेड भी बनाया जाता है। जिस मौसम में संतरे नहीं होते उस मौसम में लेमोनेड का प्रयोग वही लाभ देता है जो संतरे से मिलता है। जिन क्षेत्रों में संतरे नहीं होते वहाँ पर इसका प्रयोग उचित होता है। अपने भीतर पाई जाने वाली प्रोटीन और विशेष प्रकार के शर्करा के कारण इसे पौष्टिक पेय के रूप में प्रयोग किया जाता है।
संतरे को एक टॉनिक के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। संतरे के जूस में मौजूद कैल्शियम, फास्फोरस, लौह, विटामिन ए और विटामिन सी के कारण ये शरीर के विकास में बहुत सहायक होता है। दांतों और हड्डियों को मजबूत करने में इसकी अहम भूमिका होती है। यही कारण है कि छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए इसके प्रयोग को जरूरी बताया गया है। दूध देने वाली महिलाएं भी संतरे के जूस का प्रयोग कर सकती हैं। हमने अब तक संतरे के जितने भी लाभ बताए हैं उनके अतिरिक्त एक या दो गिलास संतरे के रस का प्रयोग करके कब्ज जैसी समस्या का समाधान किया जा सकता है।
पोटेशियम जैसे पर्याप्त तत्वों की मौजूदगी के कारण संतरे के पानी के प्रयोग से शरीर के भीतर पाए जाने वाले विषैले पदार्थ मूत्र के माध्यम से निकल जाते हैं। ये जानना भी लाभदायक हो सकता है कि वे लोग जो अस्थमा, गठिया या फिर त्वचा के रोगों से घिरे हुए हैं वे अगर पाबंदी से संतरे का प्रयोग करें तो इससे उनको लाभ होगा। भूख लगाने में भी संतरे का बहुत अच्छा रोल होता है, इसलिए खाना खाने से कुछ पहले एक संतरा खाने से भूख खुलकर लगती है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें कैलोरीज बहुत कम होती है।
संतरा, उसके पत्ते, उसकी छाल और उसके एसेंस के भीतर उपचारिक विशेषताएं पाई जाती हैं। संतरे के एसेंस में एंटीसेप्टिक और एक्सपेक्टोरेंट का प्रभाव होता है। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक मरहम में किया जाता है। वो एसेंस जो संतरे के फूलों से बनाया जाता है वो लाभदायक होने के साथ ही बहुत महंगा होता है। शरबत में संतरे की खुशबू देने के लिए इसी एसेंस का प्रयोग होता है।
ये भी सब जानते हैं कि संतरा ऐसा फल है जिसमें गुदा होता है। उसके इसी गुदे के भीतर कई प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। शरीर की त्वचा को ये सुंदर बनाए रखता है और त्वचा को ताजगी प्रदान करता है। चेहरे की झाइयां और झुर्रियों को दूर करने में संतरा लाभदायक माना गया है। इस काम के लिए संतरे के छिलके का प्रयोग किया जाता है। संतरे के छिलके को त्वचा पर कुछ देर रखने और उसके हल्के हल्के रगड़ने से त्वचा को आराम मिलता है।
शोध बताते हैं कि अगर भोजन में विटामिन सी का प्रयोग रखा जाए तो इससे दिल की बीमारी को रोकने में सहायता मिलती है। संतरा रगों की दीवारों में खून को जमने से रोकता है। डायबिटीज के मरीजों को संतरे के प्रयोग की सिफारिश की जाती है। संतरे के पत्तों में उपचारिक गुण होते हैं। संतरे के पत्तों को गर्म पानी में दम करके पीने से पाचन क्रिया उचित ढंग से काम करने लगती है। ये चीज माइग्रेन के मरीजों के लिए भी लाभदायक है।
दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक संतरे की पैदावार ब्राजील में होती है। विश्व में संतरे या नारंगी की जितनी पैदावार है उसका 30% भाग ब्राजील में पैदा होता है। ब्राजील में जितना भी संतरा पैदा होता है उसका 90% भाग इस देश के साओ पाउलो प्रांत में होता है। ब्राजील के बाद संतरे का सबसे अधिक उत्पादन अमेरिका में होता है। इस प्रकार से अमेरिका विश्व में संतरा पैदा करने वाला दूसरा देश है। चीन में बहुत से स्थानों पर संतरे की खेती होती है। संतरे के उत्पादन के हिसाब से चीन तीसरे नंबर पर आता है। ब्राज़ील, अमेरिका और चीन के अतिरिक्त अधिक संतरा पैदा करने वाले देशों में मिस्र, मेक्सिको, तुर्की और दक्षिणी अफ्रीका का नाम आता है।
ईरान में भी नारंगी या संतरे का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। इस देश के माजंदरान और गीलान प्रांतों में संतरा सबसे अधिक पैदा होता है। इन दोनों प्रांतों के अतिरिक्त किरमान, फ़ारस और हुर्मुज़गान में भी संतरे की पैदावार होती है। ईरान में नारंगी की पैदावार इतनी अधिक है कि इसको निर्यात भी किया जाता है। इराक, रूस, फ़ारस की खाड़ी के तटवर्ती देशों और कुछ यूरोपीय देशों में भी ईरानी नारंगी का निर्यात किया जाता है। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, आपसे अनुमति चाहते हैं। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस बारे में आप अपने विचार हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। तो इसी के साथ हमारी सभा भी अब यहीं पर संपन्न होती है। खुदा हाफिज़। Thank you.